ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में न्यूजीलैंड के 252 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की स्थिति मजबूत। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी में महिला बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा जो 4 अप्रैल तक चलेगा। और दिल्ली के रविंद्र भवन में चल रहे साहित्योत्सव 2025 में 22 भाषाओं के रचनाकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज। दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जीत के लिए 252 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने धुआंधार शुरुआत की है। कप्तान रोहित शर्मा और उपकप्तान शुभमन गिल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 18 ओवर में बिना किसी नुकसान के 105 रन बना लिए हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम भारतीय स्पिन गेंदबाजों के सामने बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकी। एक रिपोर्ट।
कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला एक बार फिर जोरदार अंदाज में गरजा। उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक केवल 41 गेंद में 3 छक्के और 5 चौके लगाकर पूरा किया। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 251 रन बनाए। डेरिल मिचेल ने 63 और ब्रिसवेल ने 53 रन की पारी खेली। भारत की ओर से वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी को 1-1 सफलता मिली। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
रोहित शर्मा 69 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों दिग्गज टीमों के बीच रोमांचक खिताबी मुकाबले पर दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों की नजर है। हमारे संवाददाता ने बताया कि देश में भी क्रिकेट प्रेमियों में इस मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली में महिला बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर भर से महिलाओं ने इस रैली में हिस्सा लिया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस आयोजन से महिलाओं के बीच उत्साह और सकारात्मक माहौल के साथ साथ आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा।
वो पूरी दिल्ली की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। जोड़िए इसको सबसे, वो बेटी जो घर से निकलते हुए डर रही है, उसको ये विश्वास दिलाना है कि चिंता मत कर, तेरे साथ हम खड़े हैं। उसको हाथ पकड़ के, उसकी हैंड होल्डिंग करके उसको लेके आइए ताकि उसके सपनों को उड़ान मिल सके।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस मुलाकात में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सकारात्मक नीति निर्माण और जनता के प्रति समर्पित प्रयास ही सच्ची सेवा का मार्ग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए सतत संवाद और सहयोग आवश्यक है। दिल्ली सरकार दिल्ली बजट के लिए सुझाव लेने के लिए जनता के बीच जा रही है। इस कड़ी में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों से मुलाकात की और उनसे सुझाव लिए। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्हें कई मुद्दों के बारे में पता चला। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना को जुमला बताया। सुश्री आतिशी ने कहा कि भाजपा ने वादा किया था कि 8 मार्च तक महिलाओं के खातों में 2500 रुपए जमा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अभी तक इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है।
मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को वादा किया था कि 8 मार्च तक 2500 रुपए की राशि दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में आ जाएगी। मोदी जी ने कहा था, ये उनकी गारंटी है। कल 8 मार्च था, 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए खाते में नहीं मिले। उनको इस 2500 रुपए के लिए कौन पात्र होगा ये भी नहीं पता चला। रजिस्ट्रेशन के लिए एक वेबसाइट तक नहीं मिली।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी द्वारा महिला समृद्धि योजना पर बयानबाजी को राजनीतिक हताशा बताया। श्री सचदेवा ने कहा कि योजना के लिए 5,100 करोड़ के प्रावधान से स्पष्ट है कि भाजपा सरकार अब शीघ्र महिलाओं को सम्मान राशि देना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब की महिलाओं को महिला भत्ते पर गुमराह कर रही आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र अब देश भर की महिलाएं भली भांति पहचान चुकी है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने गरीब महिलाओं को 2,500 रुपए देने के लिए महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें इस योजना को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना लागू करने के लिए 5,100 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने नव निर्वाचित विधायकों के लिए उनके विधानसभा क्षेत्रों में कार्यालय आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। श्री गुप्ता ने कहा कि उनके कार्यालय से सभी विभागों को ये आदेश जारी हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जनता की सेवा के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है।
अभी स्पीकर ऑफिस से ये आदेश जारी हुए हैं सभी विभागों को कि वो विधायकों को उनके क्षेत्र में जगह उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि वहाँ अपने विधायी कार्य कर सके, जनता से मिल सके, लोग उनके पास आ सके और लोग उनसे बातचीत कर सके, एक प्रकार का कम्युनिकेशन अधिक से अधिक हो पाए।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। श्री नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के 48वें वार्षिक समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य के नए युग में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। श्रीमती पटेल ने कहा कि सरकार देश के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और किफायती बना रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ से मुलाकात की और उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित एम्स का दौरा किया और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की। उपराष्ट्रपति धनखड़ को बेचैनी की शिकायत के बाद कल रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूत्रों ने बताया कि श्री धनखड़ की हालत फिलहाल स्थिर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज भाजपा विधायक अरविंदर सिंह लवली की स्वर्गवासी माता की अंतिम अरदास में शामिल होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस दुख की घड़ी में ईश्वर शोकाकुल परिवार को संबल प्रदान करें। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की 20 बैठकें होंगी।
बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान वित्तीय कामकाज के अलावा विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा होगी। इनमें विधि संशोधन विधेयक, तटीय नौवहन विधेयक, आवर्जन और विदेशी विधेयक तथा रेलवे संशोधन विधेयक शामिल हैं। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से शुरू हुआ, जो 13 फरवरी तक चला। सत्र की शुरुआत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025-26 लोकसभा में पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सदनों में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट भी लोकसभा में पेश की गई। बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा की उत्पादकता 112% रही। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
दिल्ली के रविंद्र भवन में 6 दिवसीय साहित्योत्सव जारी है। इस महोत्सव में 22 भाषाओं के रचनाकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम एशिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव है। एक रिपोर्ट।
हिंदी, उर्दू, मलयालम, कोंकणी, मराठी और अंग्रेजी साहित्य सहित 22 भाषाओं के रचनाकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। इन पुरस्कार विजेताओं की घोषणा साहित्य अकादमी पहले ही कर चुका था। इस बार साहित्य उत्सव में देश के विभिन्न हिस्सों से 50 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 700 से अधिक लेखक हिस्सा ले रहे हैं। इस महोत्सव का विषय है भारतीय साहित्यिक परंपराएं। इसमें युवा लेखक, पूर्वोत्तर और आदिवासी लेखक, LGBTQ लेखक, कवि, प्रकाशक और विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोग शामिल हो रहे हैं। 12 मार्च तक चलने वाले साहित्य उत्सव में प्रवेश निःशुल्क है। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मंगलवार से होने वाले विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत की ओर से 145 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे।
यह आयोजन 13 मार्च तक चलेगा, जिसमें 19 देशों से आए 105 खिलाड़ी भाग लेंगे। सऊदी अरब, जर्मनी, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, नेपाल, भूटान और श्रीलंका सहित कई अंतर्राष्ट्रीय टीमें पहले ही नई दिल्ली पहुंच गई हैं। बाकी के देशों की टीमें भी जल्द पहुंचेंगी। इस प्रतियोगिता की मजबूत टीमों में संयुक्त अरब अमीरात और कजाकिस्तान शामिल हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में हुए फर्जा पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में 21 पदक हासिल किए हैं। 3 दिवसीय इस आयोजन में 90 से अधिक प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें दुनिया भर के शीर्ष पैरा एथलीट भाग लेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
श्रम मंत्रालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किसी संगठन के साथ काम करने वाले श्रमिकों से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठाने के लिए ई श्रम पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश के 31,000 से अधिक सार्वजनिक और निजी पैनलबद्ध अस्पतालों में द्वितीय और तृतीय श्रेणी के स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए प्रति परिवार हर वर्ष 5 लाख रुपए का कवरेज प्रदान करती है। दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान मौसम सामान्य रहने का अनुमान है, वहीं कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में न्यूजीलैंड के 252 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की स्थिति मजबूत। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी में महिला बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा, जो 4 अप्रैल तक चलेगा। और दिल्ली के रविन्द्र भवन में चल रहे साहित्योत्सव 2025 में 22 भाषाओं के रचनाकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।